मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय का पांचवा सूत्र, 25 क्रियाओं का वर्णन अपन सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से आचार्य पूज्यपाद स्वामी की शरण में जाकर पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी प्रथम क्रिया का विवरण है। चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया सम्यक्त्व क्रिया। तो चैत्य संबंधी पूजा आदि हो जाएगी, फिर आदि शब्द लगाना, चैत्य के साथ पूजा, गुरु के साथ उपासना और प्रवचन के साथ स्वाध्याय, ऐसा क्रम भी बन सकता है। वो जिसका लक्षण है और जो सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है उसे सम्यक्त्व क्रिया कहते हैं। अब सम्यक्त्व के विषय में ये जानकारी आ चुकी है पहले कि सम्यक्त्व में भी अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा अर्थात शक्त्यंशों की अपेक्षा भेद होता है। चतुर्थ गुण स्थान का क्षायिक सम्यक्त्व और केवल ज्ञानी का क्षायिक सम्यक्त्व, इन दोनों में जो अंतर है उसका विवरण लब्धिसार ग्रंथ की गाथा में आया हुआ है। वहां पर जघन्य क्षायिक लब्धि और उत्कृष्ट क्षायिक लब्धि का वर्णन है, तो दोनों में बड़ा अंतर है, जघन्य और उत्कृष्ट, और बीच के सारे भेद मध्यम है। इसका अर्थ इसमें सम्यक्त में न्यूनाधिकता रहती है, और यही कारण है कि सम्यक्त में जो श्रद्धान है वो तो ठीक है, एक ही जाति का रहेगा, लेकिन उसकी जो शक्ति है उसमें अंतर पड़ेगा। और उस अंतर का हेतु अगर अपन विचार करें तो फिर हेतु यही है कि ज्ञान की निर्मलता से अथवा ज्ञान की स्पष्टता से सम्यक्त्व की में निर्मलता बढ़ती है। ज्ञान जितना जितना स्पष्ट होता जाता है, श्रद्धा में उतनी ही निर्मलता आती जाती है, श्रद्धा उतनी ही निर्मलता को प्राप्त होती है, और तभी तो जो श्रुतकेवली मुनिराज होते हैं उनके सम्यक दर्शन को अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। आप देखिए, आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास अवगाढ़ सम्यक दर्शन था, लेकिन उनके जो शिष्य 10 पूर्वधारी विशाखाचार्य थे उनके पास अवगाढ़ सम्यक दर्शन नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिनको केवल ज्ञान हो जाता है उनका सम्यक दर्शन श्रुतकेवलियों के सम्यक दर्शन से भी अधिक ऊपर का सम्यक्त होता है, उसकी संज्ञा आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में परमावगाढ़ सम्यक्त बताई है, कैवल्यालोकितार्थे, कैवल्य के द्वारा सब पदार्थ प्रकाशित हो जाने पर जो सम्यक्त होता है उसका नाम परमावगाढ़ सम्यक्त है। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि सम्यक्त्व जो है उसके अनेक भेद हैं शक्ति की अपेक्षा। वैसे तो एक सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन सामान्याद एकम, एक सामान्य की अपेक्षा सम्यक दर्शन एक है, फिर विशेष की अपेक्षा से दो भी भेद होते हैं सम्यक दर्शन के, निसर्गज अधिगमज, अभी तत्वार्थ सूत्र में अपन ने पढ़ा, फिर सराग और वीतराग भी होता है। राग सहित जो सम्यक दर्शन पाया जाता है, रागी जीव में जो सम्यक दर्शन पाया जाता है उसको सराग कहते हैं, पर सराग सम्यक्त का विशेषण बना है, तो रागेण सह वर्तते तत् सरागम, सरागम च तत् सम्यक्तम सराग सम्यक्तम, जो राग के साथ वर्तता है वो सराग सम्यक्त होता है। फिर वीतराग सम्यक भी बताया है, और फिर निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन भी बताया है। ऐसे दो प्रकार के सम्यक के तीन भेद हो गए, तीन भंग हो गए। संख्या को स्थान कहते हैं और उसके प्रकार को भंग कहते हैं। जैसे अभी दो सम्यक के स्थान पर अपन विचार कर रहे हैं, तो दो सम्यक कितने प्रकार से बनेगा, तो उसके भंग आएंगे। एक भंग हो गया, ये एक समझने की अपेक्षा, वैसे तो कर्मों की प्रकृतियों के बंध, स्थान और भंग बताए गए हैं, पर ये यहाँ पर अपन एक समझने की अपेक्षा बात कर रहे हैं कि जैसे सम्यक के दो भेद होते हैं, इस स्थान को अपन पकड़ लें, फिर वो दो भेद जो होते हैं उसके कितने भंग हो सकते हैं, भंग यानी वैराइटीज, तो या विकल्प, तो निश्चय व्यवहार ये दो हो गए, एक भंग बन गया। सराग वीतराग ये दो हो गए, दूसरा भंग बन गया। निसर्गज अधिगमज ये दो भंग हो गए, तीसरा भंग हो गया। ऐसे भंग बनते हैं। फिर तीन सम्यक की बात करें तो औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक सम्यक है। चार सम्यक की बात करें तो औपशमिक के दो भेद कर लेंगे, प्रथम ऑप्शन, द्वितीय ऑप्शन, तो ये दो हो गए, और क्षयोपशमिक और क्षयिक, पांच सम्यक करने हो तो फिर प्रथम ऑप्शन, द्वितीय ऑप्शन और क्षयोपशम के दो भेद कर लिए। एक क्षयिक के अभिमुख जो क्षयोपशम सम्यक है, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है क्षयिक सम्यक प्राप्त करने की, तो उनको कृतकृत्य वेदक कहते हैं, उनके अंत अंत की स्थिति को। तो कृतकृत्य वेदक को क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं कहते, लेकिन तो भी वो है सम्यक दृष्टि, तो वेदक सम्यक दृष्टि हो। तो वेदक दो प्रकार के हो गए, एक वेदक सामान्य और एक कृतकृत्य वेदक। वेदक का अर्थ क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, जिस सम्यक में सम्यक प्रकृति के उदय का वेदन होता है उसको वेदक कहते हैं, ये याद रहेगा। सात प्रकृतियां होती है सम्यक को बाधित करने वाली, उनमें से एक प्रकृति देश गाती है, ज्यादा नुकसान नहीं करती, उसके होते हुए सम्यक दर्शन तो रहता है, लेकिन सम्यक दर्शन में थोड़े मल उत्पन्न होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं, तो उसका वेदन जब चलेगा तो उसको वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक तो प्रकृति उसका नाम है। तो पांच सम्यक हो गए, फिर दस सम्यक जो है उनका वर्णन भी आया है, आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, सूत्र सम्यक, बीज सम्यक, संक्षेप सम्यक, विस्तार सम्यक, और अर्थ सम्यक। दस भेदों के नाम आत्मानुशासन ग्रंथ में आते हैं, उनकी भी अपन थोड़ी सी विवेचना देख लें। आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, उपदेश सम्यक, सूत्र सम्यक, बीज सम्यक, संक्षेप सम्यक, विस्तार सम्यक्त और अर्थ सम्यक्त, अवगाढ़ सम्यक्त और परमावगाढ़ सम्यक्त, ऐसे 10 प्रकार के सम्यक दर्शन भी होते हैं। फिर इनका स्वरूप क्या है वो बतलाते हैं, पहचान क्या है। आज्ञा सम्यक्त मुक्तम यदुत विरुचितम वीतराग्याज्ञयैव। वीतराग की आज्ञा के लिए ही, आज्ञा के द्वारा ही, वीतराग की आज्ञा के द्वारा ही जो श्रद्धा हो जाती है, माने भगवान के वचनों को उनका आदेश मान करके कोई शंका नहीं कुछ नहीं तुरंत स्वीकार कर लेना आज्ञा सम्यक्त। और मार्ग सम्यक्त उसको कहते हैं कि जो निर्ग्रंथ मोक्ष का मार्ग है उस पर मोहनीय कर्म के शमन से, मिथ्यात्व के शांत होने से जो श्रद्धा हो जाती है वो मार्ग सम्यक्त है। और पुराण पुरुषों के कथानकों को सुनकर, तीर्थंकर आदिकों के पुराणों को सुनकर और जो सम्यक ज्ञान के भंडार आगम समुद्र में प्रवीण गुरुओं के उपदेशों को सुनकर जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम उपदेश सम्यक्त है। मार्ग श्रद्धांत तो ठीक है, निर्ग्रंथ मार्ग के प्रति मिथ्यात्व के शमन से जो श्रद्धा हो जाती है वो मार्ग श्रद्धा है। फिर सूत्र सम्यक्त क्या है, सूत्र सम्यक्त का अर्थ आचार सूत्र को सुनकर, मुनियों की आचरण विधि को बताने वाला जो आचार सूत्र है चरणान योग, उसको सुनकर जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम सूत्र सम्यक्त है। फिर बीज सम्यक्त का अर्थ क्या होता है, दुरधिगम गते ही अर्थ सार्थस्य कैश्चित बीजे ही जातोपलब्धे असमशम वशात, असाधारण क्षयोपशम के प्रभाव से जो रहस्यपूर्ण किन्हीं बीज पदों को लेकर पदार्थों के समूह का श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है उसका नाम बीज सम्यक्त है। बड़ा दुर्लभ सम्यक्त है बीज सम्यक्त, असाधारण क्षयोपशम से होता है। और पदार्थान संक्षेपेण बुद्ध्वा रुचिमपगतवान साधु संक्षेप दृष्टि, पदार्थों को संक्षेप से ही पहचान कर श्रद्धा को प्राप्त होने वाले को संक्षेप सम्यक दर्शन वाला कहते हैं। फिर जो पूरे द्वादशांग को सुनकर श्रद्धालु बनता है उसको विस्तार सम्यक दृष्टि कहते हैं। वो थोड़ा बहुत सुनने से श्रद्धा नहीं हो रही है, पूरे 12 अंगों के 112 से भी अधिक करोड़, 112 करोड़ पदों से भी अधिक पद वाले पूरे 12 अंगों को सुनने के बाद जिसकी श्रद्धा एकदम हो जाती है वो विस्तार सम्यक दृष्टि है। फिर अर्थ सम्यक दृष्टि कौन है, संजात अर्थान कुतश्चित प्रवचन वचनान्यंतरेण अर्थ दृष्टि, वो बिना किसी उपदेश के किन्हीं पदार्थों को देखकर ही सम्यक्त को प्राप्त हो जाता है। कोई ऐसे घटनाक्रम या कुछ भी ऐसा देख करके उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, अर्थ सम्यक दृष्टि है। और सांगांग बाह्य प्रवचन अवगाह्य, अंग और अंग बाह्य रूप जैनागम में अवगाहन करके अर्थात पूरे श्रुत केवली बनकर उत्थिता दृष्टि उत्पन्न होने वाली जो श्रद्धा है उसका नाम अवगाढ़ सम्यक दर्शन है। कैवल्यालोकितार्थे रुचिर हे परमावादे गाढ़े तिरूढ़ा, केवल ज्ञान से सब पदार्थों को प्रकाशित करने के बाद जो केवली के अंदर जो सम्यक दर्शन होता है वो परमावगाढ़ सम्यक दर्शन होता है। इस तरह आत्मानुशासन ग्रंथ में 4 काव्यों में 10 सम्यक दर्शन का वर्णन था, 11, 12, 13, 14। ये इसमें नहीं, ये तो एक अलग हुई, तो निमित्त सापेक्ष कथन है और वो कर्म सापेक्ष कथन है, उपशम द्वितीय उपशम वगैरह। तो अपन ने देखा कि सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य कह रहे हैं कि ये जो जिनेन्द्र भगवान की पूजा, चैत्य पूजा, गुरु उपासना, प्रवचन का स्वाध्याय, ये सारी क्रियाएं जो होती है ये सम्यक्त को बढ़ाती है, यानी सम्यक्त की शक्ति को पुष्ट करती है। इसलिए इनको मात्र क्रियाकांड कह करके गौण नहीं कर सकते, इनको छोटा नहीं समझ सकते अपन सीधा सीधा। और जो क्रियाकांड ज्ञान कांड के साथ तालमेल रखता है, जिस क्रियाकांड का संबंध आगम के साथ है, वह क्रियाकांड कोरा क्रियाकांड नहीं कहलाता, वो क्रियाकांड आगम ज्ञान से भीगा हुआ क्रियाकांड कहलाता है। इसीलिए तो सम्यक दृष्टि के अंदर जो जिन भक्ति होती है, जो परमेश्वरों का गुणानुराग होता है उसके भीतर, वो मिथ्या दृष्टि के अंदर स्वप्न में भी संभव नहीं है, ऐसी भक्ति होती है। आप देखिए कि सम्यक दर्शन के अंगों की परीक्षा जहां जहां हुई है वहां पर उन सम्यक दृष्टियों के अंदर कितनी प्रगाढ़ भक्ति थी। उदयन राजा, रेवती रानी, इन सबके कथानकों का स्मरण करके देखें तो पता चलता है कि वो धर्मानुराग होते हुए भी निर्मल श्रद्धा में वृद्धि करने वाला है। जैसे अपन ने गत दिवस एक थोड़ा प्रकरण को विस्तृत करके बात समझी थी कि जिन पूजा, वंदना, नमस्कार आदि जो भी होते हैं, ये शुभोपयोग होकर के भी निर्जरा में किस प्रकार सहायक होते हैं, ये विषय कल अपन ने यहां पर लिया था। तो ये जो शुभोपयोग है मात्र बंद का कारण है, ऐसा उल्लेख नहीं है। जैसे अपन एक वाक्य आपके सामने रखते हैं, शुभोपयोग ही बंद का कारण है, तो उसमें उपलक्षण न्याय से अशुभोपयोग को भी ले लेना, तो ये शुभाशुभ भाव ही बंद का कारण है, ठीक है। और शुभोपयोग बंद का ही कारण है, ही को स्थानांतरित किया है, तो ही को स्थानांतरित करने पर आगम से कैसी कैसी बाधाएं आ सकती है उस पर अपन ने विचार किया था और बहुत बारीकी से किया था। एक हिसाब से देखें तो अनेक ग्रंथों का आलंबन लेकर के अपन ने पिछले सत्र में इस पर विचार किया था। तो इतना सब सुनने के बाद अब अपन क्रियाओं को, आगमोक्त क्रियाओं को साधारण न समझकर कल्याणकारी समझने लग जाएं, उसी में कल्याण है। योगसार प्रावृत ग्रंथ में जो चारित्राधिकार है उसके अंदर क्रियाओं के 3 भेद किए हैं। यहां तो अभी 25 क्रियाएं एक अलग विवेचन के अंतर्गत है, पर वहां पर क्रियाओं के 3 भेद बताए हैं और उन 3 क्रियाओं में एक है बुद्धिपूर्वक क्रिया। बुद्धिपूर्वक क्रिया का अर्थ यह है कि आपको अपने इंद्रिय जगत में जो कुछ सामने दिख रहा है और जो क्रियाएं आप इंद्रियों के आलंबन से कर रहे हैं, उसमें जो आपकी बुद्धि चल रही है, जो आपकी मान्यता हो या फिर जो आपके तर्क हो, उसके आधार पर आप उचित और अनुचित का निर्णय करके किसी क्रिया को मान्य करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, तो वो जो बुद्धिपूर्वक क्रिया है जो आपने अपने विवेक से आविष्कृत करके प्रचलित की है, उसके लिए लिखा है कि वो संसार का कारण है। वो जैन धर्म की क्रिया भी संसार का कारण है, जिसको आप जैन धर्म की मान रहे हैं पर आगम उससे थोड़ा भिन्न जा रहा है, अथवा आपकी क्रिया आगम से भिन्न जा रही है, उस श्लोक को हम आपको बता रहे हैं। आचार्य के वचन क्या है वो देख लें। चारित्राधिकार का 84 क्रमांक श्लोक है। बुद्धिपूर्वाणि कर्माणि समस्तानि तनुभृताम संसार फलदायिनि विपाक विरसत्वतः। विपाक में विरस होने के कारण, अर्थात जब कर्म का उदय आता है तब तकलीफ होती है, ऐसी ये बुद्धिपूर्वक क्रिया होती है जिसका जब उदय आता है और फल मिलता है तब तकलीफ होती है, विरस हो जाता है, एकदम अच्छा नहीं लगता। उस संसार के फल को प्रदान करने वाली बुद्धिपूर्वक क्रिया कहलाती है। अब ये क्या वस्तु है बुद्धिपूर्वक क्रिया? तो आचार्य महाराज ने उसके पूर्व काव्य में 82 नंबर के काव्य में लिखा है, 82 में योगसार प्रावृत चैप्टर 8 यानी 8वां अधिकार, चरित्र अधिकार उसका नाम है, और श्लोक क्रमांक 82-82। बुद्धिमक्षाश्रयाम तत्र ज्ञानमागम पूर्वकम तदेव सदनुष्ठान मसंगोहम विदो विदु। इंद्रियों के आश्रित जो क्रिया है वो बुद्धि, इंद्रियों के जो आश्रित रहती है उसको बुद्धि कहते हैं, यहां पर जो कथन है, और उसमें आगम पूर्वक जो होता है वो ज्ञान होता है। और जब वो उत्तम अनुष्ठान भ्रांति रहित स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, परमावगाढ़ सम्यक के साथ जो चेष्टाएं होती है, अथवा राग रहित वीतराग अवस्था में जो चेष्टाएं होती है, वो असम्मोह पूर्वक क्रिया कहलाती है। चारित्र दर्शन ज्ञान तत्स्वीकारो यथाक्रमम तत्रोदाहरणम ज्ञेयम बुद्ध्यादीनाम प्रसिद्ध ये। चारित्र दर्शन और ज्ञान जो यथाक्रम, दर्शन ज्ञान चारित्र के क्रम से स्वीकार किए गए हैं, जो चारित्र दर्शन ज्ञान पूर्वक है उसमें बुद्धि आदि की प्रसिद्धि के लिए यहां उदाहरण रूप से भेद को जानना चाहिए। तो बुद्धिपूर्वक क्रिया जो होती है वो सब संसारी प्राणियों के लिए संसार का फल देने वाली होती है, क्योंकि फल के काल में वो नीरस हो जाती है, विरस हो जाती है, अरुचिकर हो जाती है। तान्येव ज्ञान पूर्वाणि जायन्ते मुक्ति हेतवे अनुबंध फलत्वेन श्रुत शक्ति निवेशतः निवेशितः निवेशतः निवेशतः, यहां पर एक ही मात्रा छप गई है। तो तान्येव, वे ही क्रियाएं बुद्धिपूर्वक जो क्रियाएं एक व्यक्ति कर रहा है, थोड़ा तर्क को तर्क लगा करके कोई अनुष्ठान कर रहा है, हो सकता है दान की क्रिया कर रहा हो या पूजा की क्रिया कर रहा हो, लेकिन वो अपनी बुद्धि से कर रहा है, यानी वो अपने छद्मस्थ ज्ञान के विवेक के माध्यम से वो उन क्रियाओं को कर रहा है। उसमें उसका जैसा भी विवेक हो और जैसा उसका प्रशिक्षण हो उसके आधार पर वो करता है कि ऐसा करने से हिंसा होती है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब तर्क को तर्क लगा करके वो क्रिया कर रहा है और उसके हिसाब से वो बहुत मन लगा करके कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि यही शुद्ध जैन धर्म की क्रिया है। तो आचार्य कहते हैं कि वो संसार का कारण है क्योंकि उसने अपना विवेक लगा दिया। केवली के वचनों में छद्मस्थ का विवेक शोभा नहीं देता। केवली के वचनों में छद्मस्थों को अपना विवेक लगाना शोभास्पद नहीं है। छद्मस्थ मीन्स जो सर्वज्ञ नहीं है उनको छद्मस्थ कहते हैं, जिनके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय है उनको छद्मस्थ कहते हैं। केवली के वचनों में सर्वज्ञ के वचनों में अपने विवेक का प्रयोग करना शुभास्पद नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि तान्येव, वे ही क्रियाएं जो वो कर रहा है अपने विवेक से, वो यदि ज्ञान पूर्वाणी यानी आगम पूर्वक होने लग जाए। क्या बात कही है, कितनी सुंदर बात है। तान्येव ज्ञान पूर्वाणी जायन्ते मुक्ति हेतवे, वो मुक्ति में कारण बन जाती है। वे ही क्रियाएं जो वो अपने विवेक से कर रहा है, वो तर्क कुतर्क से कर रहा है, उसको अगर आगम से किया जाए, वास्तव में किसी के भी कहने से उसने मान लिया है कि हम जो कर रहे हैं वो आगम के अनुसार है। एक बार देख तो ले आगम में क्या है, डर क्यों लग रहा है, आगम को देख तो लो एक बार। हो सकता है डर इस बात का हो कि जो हम कर रहे हैं उससे कुछ अलग निकला तो छोड़ देना उसको, जो आगम से विरुद्ध है उसको छोड़ देना, इसी का नाम तो सम्यक्त है। पर ये बड़ी विडंबना है कि मनुष्य अपने अनुष्ठानों के प्रति इतना अधिक प्रीति रखता है कि वो जैसे तंबाकू छूटता नहीं है या अन्य व्यसन भी प्रयास करने के बाद छूटने प्रयास करने के बाद भी मुश्किल से छूटते हैं, वैसी स्थिति यहां पर है। और जिनका कल्याण दूर है उनके लिए छोड़ना भी दूर है, मुश्किल है। ये एकदम स्पष्ट लिखा, तान्येव वे ही क्रियाएं जो वो अपने बुद्धि से कर रहा है, वे ही क्रियाएं अगर ज्ञान पूर्वाणी ज्ञान पूर्वक करने लग जाए, आगम पूर्वक करने लग जाए, ज्ञानम आगम पूर्वकम लिखा ही वो है पहले, आगम पूर्वक जो होता है उसको ज्ञान कहते हैं, तो जायन्ते मुक्ति हेतवे, मुक्ति में हेतु बन जाती है। इसलिए ये बात बिल्कुल भूल जाना कि हम मोक्ष के पास हैं। ये आपके ज्ञान का विषय ही नहीं है कि कौन किसके पास है। अगर आप आगम से दूर है तो मोक्ष के पास स्वप्न में भी नहीं जा सकते। संत सम्मोह हेतुनी कर्माण्यत्यंत शुद्धितः निर्वाण शर्मदायिनी भवतीता भवातीता द्वगामिनाम। क्या बात लिखी है कि असम्मोह है कारण जिनका, ऐसी क्रियाएं असम्मोह पूर्वक क्रियाएं किसको कहते हैं, बोले कर्माण्य अत्यंत शुद्धितः, जो घाती कर्म एकदम साफ हो गए, झड़ चुके हैं, तो वो क्रिया जो भी हो रही है केवली भगवान की, दो प्रधान क्रियाएं होती वैसे, बाकी तो ठीक है, पर कल्याण के लिए अच्छी अच्छी क्रियाएं होती हैं उनकी, गमनागमन उपदेश आदि, लेकिन जो आत्मकल्याण की दो क्रियाएं होती है वो तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान है। केवली भगवान को तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान उनको होता है। परे केवल इनह सूत्र है तत्वार सूत्र के अंदर। तो निर्वाण शर्मदायिनी, निर्वाण का सुख देने वाली क्रिया होती है, किनके लिए? भवातीतात्वगामिनाम, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले उन महामनाओं के लिए। इस तरह ये तीन श्लोक बड़े ही सुंदर थे और क्रिया और ज्ञान की मैत्री स्थापित करने वाले थे। तो इससे समझ लो कि जो आगम पूर्वक क्रिया है वो चूंकि मुक्ति में कारणभूत है, ऐसा आचार्यों का स्पष्ट कथन है, इससे अपन ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्रिया हमेशा संसार का ही कारण होती है। ऐसा नहीं है, क्रियाएं भी भावों के साथ होती है और भावों में अनेक विध शक्तियां होती है। एक ही भाव क्या क्या कर डालता है इसके विषय में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, तपसा निर्जराच। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये कैसे संभव है कि तप से निर्जरा होती है। तप तो अभ्युदय का कारण बताया है, यानी तप से तो देवगति प्राप्त होती है, ये प्रसिद्ध है। तो तप से निर्जरा होती है ये बात कहां से आ गई, और च शब्द से संवर भी हो गया। तो तप से संवर और निर्जरा दोनों होते हैं, तप से देवगति भी होती है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें किसने कह दिया कि एक भाव से एक ही काम होता है, और उदाहरण दिया कि अग्नि से प्रकाश भी होता है, अग्नि से जलते भी हैं, और अग्नि से ठंड के मौसम में गर्माहट भी होती है। जब एक अग्नि से तीन काम हो सकते हैं तो एक तप से संवर निर्जरा और पुण्य हो जाए तो क्या आपत्ति है। ये सारी बातें हैं, इसलिए अपने को आचार्यों का मार्ग छोड़ना नहीं है। बात यह है कि अध्यात्म की धारा में बहने पर कभी कभी आगम की बातें थोड़ी सी नीचे लगने लग जाती है, पर सर्वज्ञ का स्मरण करके देखना कि सारे वचन उन्हीं के हैं, इसलिए उनके एक अक्षर पर भी अश्रद्धा सीधा सीधा मिथ्यात्व है, सीधा सीधा परोक्ष मिथ्यात्व नहीं है, प्रत्यक्ष मिथ्यात्व है। भगवती आराधना की 38वीं गाथा में लिखा है, पदमखरम च एकम नरोचेदि जो सुत निदिठम अवशेषम रोचंतु मिच्छा इट्ठी मुणे यव्वो। पूरे शास्त्र पर उसको श्रद्धा है, पर आचार्य कहते हैं कि एक पद पर यानी एक शब्द पर उसको विश्वास नहीं बैठ रहा है, अथवा अक्षरम च एक अक्षर पर विश्वास नहीं बैठ रहा है। मान लो पद तो ठीक है, दो तीन अक्षरों से एक शब्द बनता है, तो एक शब्द पर अथवा एक अक्षर पर भी जिसको अश्रद्धा है और बाकी सारे शास्त्र पर उसको श्रद्धा है, तो जान लेना वो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि ये जो चैत्य पूजा, गुरु उपासना, प्रवचन स्वाध्याय आदि, अथवा इन तीनों की पूजा और आदि शब्द से और भी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती है, वो सब सम्यक् को बढ़ाने वाली क्रिया है। इसलिए ये जो क्रिया है, गुरु के लिए मुनि दान भी होता है, तो वो दान भी सम्यक् की वृद्धि कर सकता है। आदि शब्द बहुत विशाल है, आदि में आगम की मर्यादा रखते हुए बहुत कुछ समाविष्ट हो सकता है। इसलिए ये सारी बातें जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, वो बार बार एक ही बात कहते हैं, आर्षा विरोधेन। जो भी इसमें से सार निकालना हो आपको निकालो, लेकिन आर्षा विरोधेन। जो श्रुत केवली आदि बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उनकी आगम धारा से अविरोध अर्थ निकालना, अभिप्राय ग्रहण करना, आगम से विरुद्ध ग्रहण नहीं करना, तो फिर यहां पर जो चैत्य पूजा आदि जो शब्द आए हैं, ये कोई हल्की फुल्की क्रिया नहीं, किंतु ये वहां से आई हुई क्रिया है, अनादि से है। तो उसमें अपन यहां पर पंचम काल में बैठकर इस हुंडाव सर्पिणी में ज्ञान के ह्रास का समय चल रहा है, उस समय अपनी बुद्धि लगाकर कोई नया आविष्कार करने का प्रयत्न करके अपने नाम बढ़ाई या अपनी कीर्ति या अपना समूह बनाने का प्रयत्न न करें तो ज्यादा अच्छा है, करें तो कम अच्छा नहीं है, करें तो अच्छा नहीं है, ऐसा समझना। फिर कह रहे हैं, अन्य देवता स्तवनादि रूपा मिथ्यात्व हेतु का प्रवृत्तिर मिथ्यात्व क्रिया। अन्य देवता का अर्थ होता है जो जिन मत से भिन्न है, और अन्य रूप है देवता का, जो स्वरूप है उससे भिन्न है, मिथ्या देवता भी कह सकते हैं इनको। तो ऐसे मिथ्या देवता संबंधी स्तवन आदिक रूप जो क्रिया होती है, उनकी स्तुति आदि रूप जो क्रिया होती है, वो मिथ्यात्व हेतु का प्रवृत्ति, और मिथ्यात्व में कारणभूत प्रवृत्ति जो है उसका नाम मिथ्यात्व क्रिया है। फिर गमनागमनादि प्रवर्तनम कायादि भी प्रयोग क्रिया। गम जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इस प्रकार से दूसरों को प्रवृत्ति कराना शरीर आदि की चेष्टाओं से, उसका नाम प्रयोग क्रिया है। तीसरी क्रिया प्रयोग क्रिया है। फिर चौथी जो संयतस्य सतः अविरतम प्रत्याभिमुख्यम समाधानक क्रिया। संयमी होकर भी दीक्षा छोड़ने के प्रति एक अंदर भाव आ जाता है और उसके अभिमुख हो जाते हैं दीक्षा छोड़ने के लिए, वो समाधान क्रिया है। ईर्यापथ निमित्त ईर्यापथ क्रिया। ईर्यापथ में निमित्तभूत ईर्यापथ क्रिया है। यहां पर ईर्यापथ का अर्थ वो ईर्यापथ नहीं लेना जो ईर्यापथ आश्रव के अंतर्गत आएगा, यहां पर ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद बता रहे हैं। याद है कितने भेद हैं, कल पढ़े थे, पांच इंद्रियां, चार कषाय, पांच अव्रत और 25 क्रिया, 39 थे, 39 बोलते हैं हिंदी में। तो ईर्यापद क्रिया माने ऐसी गमनागमन संबंधी क्रिया है। ताइता पंच क्रिया, ये पांच क्रियाएं हुई, 25 की गिनती लगाने के लिए पांच पांच का सेट बना रहा है। क्रोधावेशात प्रादोषी की क्रिया, उसमें कोई हेतु भी हो सकता है पांच पांच का समूह बनाने में, क्रोध के आवेश से होने वाली जो क्रिया है वो प्रादोषी की क्रिया है। क्रोध के आवेश में ऐसे कई बार बच्चे लोग ऐसे मुंह फुला करके बैठ जाते, फिर उनको मनाना पड़ता है, उनकी आरती उतारनी पड़ती फिर वो ऐसे, वो बच्चों के एक उदाहरण के लिए बता रहे, बड़े लोग भी अपने ढंग से करते हैं, फिर वो तोड़ फोड़ करते हैं कभी कभी, कभी सामान बाहर फेंक देते खिड़की से गुस्से में, कभी चश्मा तोड़ डालते हैं किसी का हाथ लग जाए उनके, तो ये सब जो है प्रादर्शी की क्रिया है। फिर प्रदुष्टस्य सतो भ्युद्यम कायिकी क्रिया, और दुष्ट होते हुए कोई अभ्युद्यम करना, वो कायिकी क्रिया है, शरीर से कोई चेष्टा करना कायिकी क्रिया है। हिंसोपकरणादान आदि, हिंसोपकरणादानाद दाधिकरणी की क्रिया, हिंसा के उपकरणों को इकट्ठा करना वो आधिकरणी की क्रिया है। यानी आप बंदूक और फिर तलवार वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं तो वो आधिकारण करने की क्रिया है। फिर सत्व दुखोत्पत्ति तंत्रत्वात् पारितापी की क्रिया, ऐसी क्रिया जिससे जीवों को तकलीफ हो, जैसे बस में चले जा रहे हैं आप और बाहर से जो पेड़ पौधों की टहनियाँ आ रही है, पत्तियाँ आ रही है, उसको ऐसे तोड़ते जा रहे हैं और ऐसे फेंक रहे हैं पत्तों को और वो उड़ रहे हैं हवा में, तो आपको मजा आ रहा है। पारितापी की उस तकलीफ देने वाली क्रिया होती है। या कभी कभी बैठे बैठे लोग चीटियां चल रही तो उनको ऐसे रोकेंगे, ऐसे फिर वहां जाएगी तो वहां ऐसे रोकेंगे, ऐसे टाइम पास होता है उनका, तो ये भी पारितापी की क्रिया। फिर आयु इंद्रिय बल प्राणानाम वियोग करणात् प्राणातिपाति की क्रिया, आयु इंद्रिय बल और प्राणों का वियोग करने वाली जो क्रिया होते हैं उसको प्राणातिपाति की क्रिया है, यानी किसी की जान लेना प्राणातिपाति की क्रिया है। ताइताह पंचक्रिया, ये सिर्फ सम्यक दृष्टियों के लिए नहीं है, पूरे संसारी जीवों के लिए बता रहे हैं। सम्यक दृष्टियों के लिए तो एक ही क्रिया थी, सम्यक क्रिया, बाकी तो सभी लोग कर सकते हैं। ये पांच क्रियाएं और हुई। फिर रागार्द्री कृतत्वात् प्रमादिनो रमणीय रूपालोकनाभिप्रायो दर्शन क्रिया, राग से भीगा हो जाने के कारण जो प्रमादी जीव है, यहां पर प्रमादी जीव का अर्थ लापरवाह नहीं, स्नेह के अभिभूत है, जो वो रमणीय रूपालोकनाभिप्राय किसी सुंदर रूप को देखने का अभिप्राय रखते हैं और देखते भी हैं, उसका नाम दर्शन क्रिया है। कभी चोरी से देखते हैं, कभी कहीं ऊपर से बैठ खड़े होकर के देखते हैं, ये सब दर्शन क्रिया के अंतर्गत। फिर प्रमाद वशात स्पृष्टव्य संचेतनानुबंध स्पर्शन क्रिया, फिर उसी प्रमाद के प्रभाव से किसी छूने योग्य विषय को छूने का अभिप्राय रखना और अनुबंध रखना, अनुबंध यानी संपर्क रखना, यानी किसी को छू करके सुखी होने का भाव रखना, वो स्पर्शन क्रिया है। और छूना भी, ये दोनों एक प्रकार से शील को दूषित करने वाली क्रियाएं हैं। फिर कहते हैं अपूर्वाधिकरण उत्पादनात् प्रात्ययी की क्रिया, और जो असाधारण अधिकरण होते हैं, स्नेह के आधारभूत पदार्थ होते हैं, उनको उत्पन्न करना और फिर जिसके प्रति राग है उसको भेंट आदि करना, तो उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, और उस विश्वास से फिर स्नेह होता है, स्नेह से फिर वो राग की प्रगाढ़ता होती है और फिर उनका संबंध हो जाता है। तो ऐसी क्रिया का नाम प्रात्ययिकी क्रिया है, विश्वास जगाने वाली क्रिया। फिर स्त्री पुरुष पशु संपाति देशेंतर मलोत्सर्ग करणम समंतानुपातक क्रिया, स्त्री पुरुष पशु आदि जहां पर आते जाते हैं ऐसे स्थान पर अपने शरीर के भीतर की विकृति को उसका उत्सर्जन करना, उसका विसर्जन करना समंतानुपातन क्रिया है। फिर अप्रमृष्टादृष्ट भूमौ कायादि निक्षेपो नाभोगक क्रिया, बिना साफ की हुई और बिना देखी हुई भूमि पर शरीर आदि का निक्षेप कर देना, अर्थात बैठ जाना या सो जाना, अनाभोगक क्रिया है। यानी ये जो पांच क्रियाएं बताई है, ताइता पंचक्रिया, ये ऐसा प्रतीत होता है कि इनका संबंध जो है अब्रह्म से है। उससे बाहर भी हो सकता है, लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना क्रम से, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों को राग होता है वो बिना देखे शोधे किसी भी भूमि पर कायादि निक्षेप हो, शरीर आदि का निक्षेप कर लेते हैं, अनाभोग क्रिया हो जाती है। याम परेण निर्वर्त्यां क्रियां स्वयं करोति सा स्वहस्त क्रिया, जो दूसरों के निर्धारित कार्य हैं उनको स्वयं कर लेना वो स्वहस्त क्रिया है। जैसे नाई का काम है बाल काटना, हेयर कटिंग, बार्बर का काम होता ना, तो उसका काम है, लेकिन आपने कैंची उठाई और घर में आईने के सामने बैठ करके कटिंग कर ली थोड़ी, ये स्वस्थ क्रिया है। वैसे शेविंग वगैरह करना भी उन्हीं लोगों का काम होता है, लेकिन अपने हाथ से जो कर लेते हैं तो वो स्वस्थ क्रिया कहलाती है। और ऐसे और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कारपेंटर का कोई काम है और आपको थोड़ा बहुत उसकी जानकारी है तो आपने उसको ना बुला करके खुद अपने हाथ से काम कर लिया तो वो स्वस्थ क्रिया कहलाती है। तो दूसरों का काम खुद कर लेना वो स्वस्थ क्रिया है। इससे क्या हुआ कि उनको नुकसान हुआ ना, आपने कर लिया तो वो फोकट में हो गया काम, और वो करते तो उनकी आमदनी होती, उनकी आजीविका थी वो। फिर पापादानादि प्रवृत्ति विशेषाभ्यनुज्ञानम निसर्ग क्रिया, पापाश्रव संबंधी जो प्रवृत्ति विशेष है उसकी अनुमति देना वो निसर्ग क्रिया है। फिर पराचरित सावध्यादि प्रकाशनम विदारण क्रिया, दूसरे ने कोई गलत आचरण किया है तो उसका अपवाद फैला देना विदारण क्रिया है। फिर यथोक्ताम आज्ञा मावश्यकादि चारित्र मोहोदयात कर्तुम अशक्नुवत अन्यथा प्ररूपणाद आज्ञा व्यापादिकी क्रिया, ये भी बहुत खतरनाक क्रिया है। जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही हुई आज्ञा है उसको चारित्र मोह के उदय के वश से जो आवश्यक आदिक बताया है उन्होंने भगवान ने, उसको अपने कषाय के उदय से अपन नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों के लिए फिर बदल करके बतला देना। जैसे मान लो आप सामायिक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरे जब आपसे पूछते हैं कि सामायिक कैसी करनी चाहिए तो उसको एकदम इजी, एकदम सरल, कोई अपने मन से कोई एकदम ज्यादा सरल प्रक्रिया बता देना, और वो जो पूरी विधि है वो ना बता करके कुछ आसान रास्ता बता देना, तो वो आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। ऐसे और भी दृष्टांत हो सकते हैं। शाठ्यालसाभ्याम प्रवचनोपदिष्ट विधि कर्तव्यता नादरो नाकांक्षक क्रिया, दुष्टता के कारण अथवा आलस्य के कारण आगम में बताई हुई जो विधि है उसके करने में उत्साह न रखना, उल्लास न रखना, आगम की क्रिया में उल्लास न रखना। जैसे मान लो स्वाध्याय चल रहा है और आप टिक करके सोने लग गए तो वो अनाकांक्ष क्रिया कहलाती है। या फिर पढ़ भी रहे हैं तो फिर ऐसे मन में सोच रहे हैं कि कितना टाइम कब पूरा होगा, ये ऐसा विचार आना ये अनाकांक्ष क्रिया है। ताएता पंच क्रिया, ये पांच क्रियाएं हो गई। फिर इसके बाद अंत की पांच क्रियाएं बता रहे हैं, छेदन भेदन विशेषणादिक क्रिया परत्वमन्येन वा क्रियमाणे प्रहर्ष प्रारंभक क्रिया। काटने में, टुकड़े करने में और छीलने में कोई तत्पर है, या फिर अपन उसमें रुचि ले रहे हैं तो उसको उसमें हर्षित हो रहे हैं, उसका नाम प्रारंभक क्रिया है। छेदन भेदन में विशेषण, छीलने आदि की क्रियाओं में तत्पर होना, अथवा अन्य कोई कर रहा है तो उसमें हर्षित होना, बढ़िया छील दिया तुमने, बोले इसको ये लकड़ी हम चाहते थे कि ऐसी छीलो कोई, तुमने बिल्कुल सही छील दी, एकदम खुश होना, वो प्रारंभक क्रिया है। ये कई क्रियाएं तो चलती साधारण लोक व्यवहार में रहती है। फिर परिग्रह विनाशार्था पारिग्राही की क्रिया, जो मेरा परिग्रह वो बना रहे, उसकी रक्षा होती रहे, वो पारिग्राही की क्रिया है। ज्ञान दर्शनादिशु निकृतिर वंचनम माया क्रिया, ज्ञान और दर्शन के विषय में कपट करना माया क्रिया है, ठगना माया क्रिया है। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन ठगेगा ज्ञान और दर्शन? तो एक दिन हमने बताया था ना कि एक प्रश्न पूछा गया था किसी से कि ये शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं क्या, तो उत्तर देने वाले ने क्या कहा कि भवनत्रिक में उत्पन्न होने वाले नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं था, ये छल था। प्रश्न क्या था, उसने ये पूछा था क्या कि भवनवासी वेंतर और ज्योतिष के देवों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो सकते हैं क्या? अगर ये प्रश्न पूछा होता तो उनका उत्तर समुचित था कि भवनत्रिक में मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर था। लेकिन प्रश्न ये था कि जिन शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं क्या, तो उनने वो उत्तर दिया जो इसका उत्तर नहीं है, इसका नाम माया क्रिया है। अन्यम मिथ्या दर्शन क्रिया करण कारणाविष्टा विष्टम प्रशंसादिभिर् दृढ़यति यथा साधु करोषि इति सा मिथ्या दर्शन क्रिया। एक मिथ्यात्व क्रिया थी, अब मिथ्या दर्शन क्रिया दूसरी है। यहां क्या कह रहे हैं कि कोई मिथ्या दर्शन की क्रिया करने में या कराने में तत्पर है तो उसको प्रशंसा आदि करके दृढ़ करना, यथा जैसे साधु करोषि इति, बढ़िया कर रहे हो तुम, दो यार काम अच्छा कर रहे हो तुम, वह मिथ्या दर्शन क्रिया है। संयम घाती कर्मोदयावशात, कर्मोदयवशात संयम घाती कर्मोदयवशात अनिवृत्तिर अप्रत्याख्यानक क्रिया, संयम घाती कर्म के उदय के प्रभाव से संयम न धारण करना अप्रत्याख्यान क्रिया है। अणुव्रत महाव्रत धारण न करना अप्रत्याख्यान क्रिया है। ताइता पंच क्रिया, ये सारी पांच क्रियाएं हुई, समुदिता पंचविंशत क्रिया, सब मिलाकर 25 क्रियाएं हो जाती है। एतान इंद्रियादीनि कार्य कारण भेदात भेदमापद्यमानानि सांप्रायिकस्य कर्मण आश्रव द्वाराणि भवन्ति। ये कार्य कारण के भेद से सांप्रायिक कर्म के आश्रव द्वार बन जाती हैं ये सब क्रियाएं। और फिर सारे तो इस तरह आज पांचवा सूत्र पूर्ण हुआ, इसके आगे छठा सूत्र आएगा। जैनम जयतु शासनम।